দশম স্কন্দ সপ্তদশ অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা 21 তদা শুচি বন অদ্ভুত দাবগ্নি সর্বত গজম সুপ্ত নিশিতে আবিত্যা প্রদগ্ধম উপচক্রমে তদা শুচি বন উদ্ভূত তদা শুচি বন উদ্ভূত দাবগ্নি সর্বত ব্রজম দাবগ্নি সর্বত ব্রজম সুপ্তমনীষিতে আবৃত্তা উপচক্রমে তদা শুচি বন উদ্ভূত দাবগ্নি সর্বত ব্রজম সুপ্তমনীষিতে আবৃত্যা প্রদগ্ধম উপচক্রমে তদা তভি শুচি গ্রীষ্মকালীন বন জঙ্গল মে উদ্ভূত উৎপন্ন দাবগ্নি জ্বলা সর্বত সারি দিশায় মে রজম বৃন্দাবন কো লোগো কো সুপ্তম সোয়ে হুয়ে নিশীথে অর্ধরাত্রি মে আবৃত ঘের কর প্রবুদ্ধম জলানে উপচক্রমে লগি। অনুবাদ তথা তাৎপর্য শ্রী গোপালজীকে শিষ্যকে দ্বারা। রাত্রি মে জব বৃন্দাবন কে সবই লোক সোয়ে হুয়ে থে তো সুখে গ্রীষ্মকালীন জঙ্গল মে ভীষণ আগ ভড়ক উঠি। ইস আগ নে চারো ওর সে ব্রজবাসীয় কে ঘর ঘের লিয়া আর ও উনোনে ঝুল শান্তে লগি। তাৎপর্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী তথা শ্রীল বিষ্ণু চক্রবর্তী ঠাকুর নে টীকা কি হে কি কদাচিত কালিও কি কিসি বিশ্বাসনীয় মিত্র নে আপনে মিত্র কা বদলা লেনে কে লিয়ে দাবাগ্নি কা রূপ ধারণ কর লিয়া থা যা ফির কংস কে কিস অনুযায়ী অসুর নে ইয়ে আগ লগাই হোগি। ওম অজ্ঞান তিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় চক্ষুর্মীলিতম জ্ঞানং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীচৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতম যেন ভূতলে স্বয়ং রূপ গদামায়ং দদাতি সর্বদান্তিকম্। বন্দেহং শ্রীগুরুং শ্রীকৃতপদপ্রমদম শ্রীগুরুং বৈষ্ণবাংশ্চ শ্রীরূপং সর্বজাতং শ্রবণমদগুণকান্তিকম তং সজীবম শারদৈকং শাবধূতং পরিজনাশ্রিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবম শ্রীরাধাকৃষ্ণপদাম শ্রবণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতমশ্চ শাদ্বৈতং শাবধূতং পরিজনশ্রিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবম শ্রীরাধাকৃষ্ণপদাম শ্রবণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতমশ্চ। নমঃ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামিনীতি নাম্নে। নমস্তে সরস্বতীদেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদে পশ্চাৎদেশকারিণে। নমঃ বদন্নায় কৃষ্ণা প্রেমা প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরতিশে নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিশ্বভানুষুকে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীভাষাদি শিবভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণা 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণা 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণা 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 হরে হরে কৃষ্ণ। তো আজকে যে শ্লোক হিসকে শীর্ষক হয় কালিয়োগ ইতিহাস। সংক্ষিপ্ত সময় হ্যাঁ, 9 বজে অন্দর ক্লাস কো বিরাম দেনা হাথ সাথ আজ অদ্বৈত আচার্য গুরু কাজ আবির্ভাব তিথি, তো বর্ণন করার হ্যাঁ। তো অদ্বৈত আচার্য গুরু তো বিস্তারিত রূপে শাস্ত্র বর্ণন কি হ্যাঁ, কই তিন কিতাব কো ঢুঁড়তে রে জেসে কি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গুরুজি লিখে চৈতন্য চৈতন্য গ্রন্থ হ্যাঁ, চৈতন্য মঙ্গল হ্যাঁ, চৈতন্য ভাগবত, তো তিনো কিতাব মিলকর লগভগ 2200 শ্লোক 2200 কা শ্লোক কো উপর এই অদ্বৈত আচার্য কা তত্ত্ব কো উপর বিশ্লেষণ কিয়ে। তো এই আধা ঘন্টা সময় মে 2200 श्लोक मतलब 2200 श्लोक को विश्लेषण करना मेरे द्वारा संभव नहीं है, फिर भी उसमें से मैंने प्रयास करूंगा। जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ महाराज की जय, श्री गोविंदा की जय। उसमें से 2-4 श्लोक को लेकर वर्णन करने के लिए, तो आज का जो श्लोक है इसमें वर्णन किए कि ब्रजवासी कृष्ण को ऐसे एक मामूली बालक सोचते थे। मामूली बालक सोचने का कारण भी अपना मन में विचार कीजिए, ये जो एक मामूली बालक लेकिन ऐसा कोई शक्ति उन्होंने प्राप्त की है जिसके द्वारा, जिस शक्ति के बल के द्वारा कभी भी कोई भी संकट में वो हमारे उद्धार कर सकते हैं। जब कृष्ण को कल्याणी बांध के रखा था तब ब्रजवासी ने एकदम दुखित हो गए, सोचने लगे कि हमारा परम प्रिय कृष्ण ऐसा कुछ अलौकिक शक्ति के दर्शन कराए जिसके द्वारा हम लोग उसका प्रेम बंधन में फंस जाए। श्री भक्ति ठाकुर इसको वर्णन कर रहे शास्त्रों में कि कृष्ण ने ऐसा कुछ कार्यक्रम दिखाए जिसके लिए गोपो बालक तथा गोमाता ये दोनों प्रेम का बंधन में फंस चुके थे, और जिसके कारण कृष्ण का हाल लीलाएं जो कि वृंदावन लीला में सिर्फ एक गोपो बालक और गो माता ये दोनों को परिपूर्ण रूप से संतुष्ट करने के लिए कृष्ण ने इस तरह से लीला को प्रकटित की थी। इसमें वर्णन किया कि दबाग्नि के द्वारा श्री सनातन गोस्वामी पाद इसमें वर्णन कर रहे हैं कि दबाग्नि हो सकता है कि कालिया का ऐसा कोई मित्र हो जो कि कालियों ने इस तरीका से भगवान के द्वारा धन प्राप्त हुए जो कि उन्होंने सहल नहीं कर पाए, ये भी एक तरीका बताया। दूसरा आचार्य ने बताया कि कालिया का ऐसा कोई रूप हो सकता है जो कि कंस का रूप होता है, इसी तरीके से कोई रूप लेकर आकर ब्रजवासी को परेशान करने के लिए आए, लेकिन ब्रजवासियों का मन में पूर्ण रूप से विश्वास था कि हमारा छोटे बालक कृष्ण भले भी कुछ भी संकट आ जाए जीवन में, कुछ भी संकट आए लेकिन उसी संकट से किसी भी तरीका से ये मुक्त कर सकते, क्योंकि शुरू बात में कृष्ण लीला में भी हम लोग पढ़े कि गर्ग मुनि जब कृष्ण को पहले देखा, जब नामकरण कार्यक्रम में उन्होंने आए गर्ग मुनि, तब कृष्ण को देखकर उन्होंने बताया कि ऐसे एक महापुरुष जो कि पूरा जीवन भर ब्रजवासियों को वो रक्षा करेंगे कोई ना कोई तरीका से, कुछ भी संकट आ जाए तो कृष्ण उनको रक्षा कर देंगे। तो ब्रजवासियों का मन में विचार था कि ऐसा कोई अलौकिक शक्ति संपन्न भक्ति ठाकुर इसको वर्णन कर रहे कि कृष्ण ने ऐसा कुछ शक्ति को प्राप्त कर ली थी जिसके कारण कोई भी संकट आए, जिस संकट को उन्होंने निभा सकते हैं। भक्ति ठाकुर गाते हैं ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम परिवार दान, तो कोई अगर कृष्ण को पूर्ण शरणागत हो जाए तो कृष्ण उनको रक्षा कर देते। शरणागति में भक्ति ठाकुर गाते हैं शरंग शरणागति होइबे जाहार ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, जिन्होंने पूर्ण रूप से कृष्ण का चरण में आपने को समर्पित कर दिए, कृष्ण हर तरीका से उसको रक्षा कर देते। ये गोपो बालक और ब्रजवासी सबका मन में यही विचार था कि कृष्ण के साथ ही रहना, इसको कहते थे पूर्ण शरणागत भाव। सरंग शरणागति हईबे जहा ताहार प्रार्थना शुने सिनंद कुमार। दैन भाव से अगर कोई भगवान के पास शरणागत हो जाए तो भगवान उसको रक्षा कर देते हैं। दैन आत्मनिवेदन गतित्व वरण अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास। दैन भाव से अगर कोई भगवान का चरण शरणागत हो तो भगवान उसको रक्षा कर देते हैं। तीस कार्यकारी जब गर्ग मुनि पहला नामकरण में आए, कृष्ण का नामकरण कार्यक्रम में जब उन्होंने आए, तब ये गर्ग मुनि नंद महाराज कहता है कि तुम्हारा पुत्र ऐसे एक महान महापुरुष बनेंगे जिसके द्वारा पूरे ब्रजवासी को उन्होंने रक्षा कर सकते हैं। और यही गर्ग मुनि जो कि गौ लीला में नीलांबर चक्रवर्ती रूप लेकर आए थे, सेम जैसे कि गर्ग मुनि का कार्यकारिता है उसी तरीका से नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर का भी कार्यकारिता है। जब नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु का पितामह कहते हैं, सच्ची माता का पिताजी नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्होंने नवद्वीप धाम परिक्रमा की, उनको जरूर पता होगा कि बेल पुकुर बोल के एक जगह है जहाँ पे एक विग्रह है जिसका नाम है मदन गोपाल। और यही मदन गोपाल विग्रह नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर का परंपरा धारा में आज भी उसका सेवा पूजा चल रहा है। तो नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर जिन्होंने ब्रज लीला में जो गर्ग मुनि और वही गौर लीला में नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर, जैसे कि कहते हैं ना कि ब्रज लीला और गौर लीला इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो पार्षद ब्रज लीला में आए वही सेम पार्षद गौर लीला में आए। तो यही गर्ग मुनि गौर लीला में नीलांबर चक्रवर्ती रूप लेकर उन्होंने आए थे। जब महाप्रभु का नामकरण उत्सव चल रहे थे, नामकरण नाम संस्कार, पहले ऐसा विधि था कि बच्चा प्रसव होने के बाद प्रसूति गृह में रहते थे जिसको कहते कि श्रुति का गृह। श्रुति का गृह में रहने के बाद एक महीना श्रुति का गृह में रहने के बाद बच्चे बाहर आते थे, लेकिन आज का दिन में तो कलयुग के प्रभाव से हल्का से दुनिया में ऐसा हो गया कि बच्चा डायरेक्ट नर्सिंग होम से सीधा बेडरूम। पहले ये नियम नहीं था, पहले श्रुति का गृह में रहना पड़ता था बच्चा और माता दोनों। श्रुति का गृह से सब एक महीना बाद बाहर आते थे। अगर अपने शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो नित्यानंद प्रभु स्वयं श्रुति का गृह में थे, श्री चैतन्य महाप्रभु श्रुति का गृह में थे, पहले जमाने में ऐसा विधि था। लेकिन कली का प्रभाव से ऐसा हो गया कि आजकल श्रुति का गृह बोल के कुछ है ही नहीं, सीधा बच्चा नर्सिंग होम से डायरेक्ट भेज लो। तो ये नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर जब श्री चैतन्य महाप्रभु का नामकरण उत्सव कर रहे थे, उसी नामकरण उत्सव में जब उन्होंने पहले आए आकर जब उन्होंने सोची माता जब अपने बच्चा को अपना स्तन से दूध पिला रही थी, ये दूध पिलाने का समय सच्ची माता ने देखा कि अपने बेटा अपने पुत्र निमय का चरण में बहुत प्रकार का चिन्ह है, देयर आर सो मेनी सिंबल्स। तो सच्ची माता ने जब तुरंत देख ली, देखने के बाद उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया। तो जगन्नाथ मिश्र भी आए भागकर भागकर सामने आकर जब देखने लगे, जब गर्ग मुनि जिसी तरीके से बताया थे, देखो तुम्हारा पुत्र कृष्ण ऐसे बहुत प्रकार का चिन्ह है, सिंबल, संकेत है, जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कि ये एक महापुरुष है। उसी तरीके से गर्भमणि का अवतार नीलम चतुर्थी ठाकुर भी बताया कि एक बालक ऐसे कोई मामूली बालक नहीं है, इसका पायल में 32 प्रकार का चिन्हों का वर्णन किया है शास्त्रों में। जिस 32 प्रकार का चिन्ह व संकेत का जो वर्णन है, एक 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 चिन्ह का एक एक अलग महत्व तो है। जिनका और अधिक जानकारी लेना है इसका ऊपर के 32 प्रकार चिन्हों, श्री गोपाल जी वर्णन कर रहे कि जो 32 प्रकार चिन्ह व संकेत जो है, आपके घर में जब बच्चा प्रकट बच्चा आते हैं घर पे, तब आप भी अपना बच्चा को शैशव अवस्था में, बाल्य अवस्था में आप भी देख सकते हो कि कितने सारे चिन्ह है। श्री गोपाल जी जब इस धराधाम में आपने को प्रकटित की थी, तब गोलमोहन देव ऐसे ही एक ज्योतिष को बुला रहे थे। उस दिन संभ्रषण को भी बता रहे थे इस कहानी को कि गोलमोहन देव ने एक ज्योतिष को बुलाया। उसी समय का ज्योतिष का बहुत शक्ति, बहुत पावर थे, लेकिन आज का ज्योतिष सब प्रोफेशनल हो गए। आप टीवी देखो, पेपर देखो, कोई भी जगह में पेपर खुलने से, टीवी खुलने से एक ज्योतिष का नाम एड में आता था, आज भी आते हैं विज्ञापन। लेकिन पहले जमाना में ऐसा कोई ज्योतिष का नाम बोलकर कोई विज्ञापन नहीं आता। आप बाहर में घूमने के लिए जाओ, इधर से चर्चगेट बम्बई तक जाओ, देखो एक से एक जगह में ग्रो साइन बोर्ड में लिखा है ज्योतिष, ज्योतिष का फोटो के साथ बहुत कुछ लिखा रहता है। लेकिन जो असली होती है, श्री गोपाल जी से वर्णन कर रहे हैं कि असली ज्योतिष जो है, आपने वाले कभी विज्ञापन नहीं देते, आपने वाला कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट फॉर द एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम। क्योंकि श्री गोपाल जी वर्णन करके एस्ट्रोलॉजी केम्स फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। ये जो ज्योतिष शास्त्र जो है, ये भगवान का चरणार बिंद से आए है। सो देयर इज नो भाव, मतलब इसमें कोई ये नहीं रहते इसमें कि विज्ञापन देने से पब्लिक अट्रैक्ट हो जाता है। इसमें श्री गोपाल जी लिखा है प्रभुपाद लीला नीति में, टेप मिनिस्ट्री में इसका वर्णन है कि नाउ ए डेज द एस्ट्रोलॉजर बिकम ए प्रोफेशनल। आज का दिन में जितने सारे ज्योतिष है सब प्रोफेशनल बन रहे हैं, पेशादार हो गए, पैसा के द्वारा आपका भविष्य को बता देते हैं। लेकिन नीलम चक्रवर्ती ठाकुर जब सीखे थे महाप्रभु को, जब सूची माता ने देख ली कि अपना पुत्र का चरण इसी प्रकार का चिन्ह है, तो उन्होंने जाकर जगन्नाथ मिश्र को बताया। तो जगन्नाथ मिश्र भी आके देखने लगे कि अरे ये तो सही बताया उन्होंने, तो बहुत प्रकार चिन्ह है इसमें। ये दोनों एक चर्चा करके सोच लिए कि चलो नीलम चतुर्थी ठाकुर को हम लोग बुलाते। तो नीलम चक्रवर्ती ठाकुर आए, आने के बाद तो देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में 32 प्रकार का चिन्ह है, 32 सिंबल्स रख दिए। 32 प्रकार का चिन्ह संकेत जो कि चैतन्य चतुर्थी ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। आज मैंने सवेरे पढ़ रहा था, लेकिन मेरे पास एक किताब था उसमें श्लोक का वर्णन है, मेरे पास हिंदी किताब नहीं था। फिर मैंने आदियों को बस गए, आदियों को से हिंदी चैतन्य चतुर्थी लिए, फिर हिंदी मेरे को पढ़ना नहीं आता है बराबर। फिर मैंने दामोदर प्रभु को बस गए, उनको द्वारा पढ़ा है, तो बहुत ही सुंदर उसमें वर्णन किए हैं कि 32 प्रकार का चिन्ह का व्हाट इज द सिग्निफिकेंस अबाउट दैट। तो उसका तात्पर्य में लिखे कि किस तरीके से चिन्ह के द्वारा क्या होता है। तो नीलम चक्रवर्ती ठाकुर देख ले कि श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह में पांच प्रकार का पंच दीर्घ कहते हैं शास्त्र। इस पंच दीर्घ में एक चिन्ह था जिसको कहते कि तालिका बाहु। तो नीलम चक्रवर्ती ठाकुर जब देख लिए कि तालिका बाहु बोलकर एक चिन्ह है, जिस चिन्ह अगर किसी का चरण में रहते हैं तो वो बच्चा घर में रहने वाला नहीं है। तो नीलम चक्रवर्ती ठाकुर ने ये चिन्ह जब देख लिए तालिका बाहु चिन्ह को, तब उन्होंने शक हो गए। तो इस चिन्ह का सूची माता पूछने लगी कि आप बताइए कौन सा चिन्ह का क्या महत्व है। कृष्णदास कविराज के समय वर्णन कर रहे हैं कि सब प्रकार का चिन्ह का वर्णन नीलम चक्रवर्ती ठाकुर ने सूची माता को बताए सब कुछ, लेकिन एक चिन्ह जो है तालिका बाहु, इस तालिका बाहु का ऊपर कुछ वर्णन नहीं किया, क्योंकि जिसके पैर में जिसका चरण में इस प्रकार का चिन्ह रहते हैं और निश्चित रूप से वो महापुरुष बनते हैं, से महापुरुष नहीं वो लड़का घर में रहने वाला है। गौर मोहन दे श्री गोपाल जी का पिताजी जब उन्होंने ये चैतन्य चैतन्य ग्रंथ को पढ़ते रहते थे, एक जगह में लिखा है वो मंडेरी में कि गोपाल लिखते हैं कि मेरा पिताजी इतने बिजी शेड्यूल, सुबह से रात तक इतना बिजी शेड्यूल में भी हर दिन आकर वो चैतन्य चैतन्य ग्रंथ को अध्ययन करते थे। तो गौरमोहन देवी जब इसी अध्याय को पढ़ना चालू की थी, तब उन्होंने जब श्री गोपाल जी धर्मधाम में प्रकटित हुए थे, तब उन्होंने ये ज्योतिष को बुलाया। तो ज्योतिष आकर बहुत सारे चिन्हों का वर्णन भी किए थे। तो उन्होंने भी बताया कि तुम्हारा जो बच्चा, ये बच्चा निश्चित रूप से महापुरुष बनेंगे। ज्योतिष तो बोलकर चला गए, बाद में ज्योतिष कहाँ चला गया किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन छोटा उम्र में बोल के गए। कहने का मतलब ये है कि वो ज्योतिष बोलकर गए थे, लेकिन बाद में सही श्री प्रभुपाद इतने उम्र में जाकर पूरा देश विदेश में इतने सारे कृष्ण भाव में मुझको बिछा दी थी। तो जो ये कहने का मतलब ये है कि श्री प्रभुपाद जी वर्णन करके आज का दिन का जो ज्योतिष है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी एक प्रकार का कहते कि पारमार्थिक विद्या, एक ज्योतिष शास्त्र एक पारमार्थिक विद्या होती है जो कि भगवान के कृपा के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। गॉड मॉर्निंग इसको प्राप्त की थी, नीलम चक्रवर्ती ठाकुर इसको प्राप्त की थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको प्राप्त की थी भगवान के कृपा के द्वारा। तो आज का दिन में हम लोग वैष्णव पूंजी का देखते हैं ना, जिसके द्वारा पूरा इस्कॉन का पूरा साल नहीं, आपने चाहे तो कंप्यूटर के द्वारा पूरा 100 साल का पूरा लिस्ट आप निकाल सकते हैं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तैयार की थी वैष्णव पूंजी का। जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने देख लिया कि विद्वान व्यक्ति है, विद्वान लेता है गौर किशोर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तब गौर किशोर दास बाजी महाराज ने बताया कि आपने एक वैष्णव पूंजी का लिखो पहले। शास्त्र में कहते हैं कि गुरु रघोगा श्रुति शास्त्र निंदनम तथार्थवाद हरि नाम निकल्पना। गुरु ने आदेश दिए तो भक्ति ठाकुर कहने लगे कि मेरा क्या योग्यता है वैष्णव पूंजी का लिखने का, आई डोंट हैव एनी क्वालिटी टू राइट दैट वैष्णव कैलेंडर। भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर की किताब है जयश्री, जिसमें उन्होंने वर्णन कर रहे कि मेरे को कुछ भी क्वालिटी नहीं था। जब मैंने आदेश प्राप्त हुई कि मेरे को वैष्णव पूंजी का लिखना है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द एस्ट्रोलॉजी, मेरे को कोई ज्योतिष शास्त्र को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन साधु गुरु वैष्णव का कृपा से मैंने प्रयास किए लिखने के लिए। तो बाद में भक्तिशंकर सरस्वती ठाकुर पहला गौड़ीय आचार्य जिन्होंने वैष्णव पंजी का कैलेंडर को स्थापना की थी। इसका पहले कोई वैष्णव कैलेंडर बोल के कुछ भी नहीं था। भक्तिशंकर सरस्वती ठाकुर एक से एक किताब देखकर उन्होंने बाद में वैष्णव कैलेंडर को प्रस्तुत की थी। नहीं तो किसको पता है कब किसका आविर्भाव किसका तिरोभाव है, किसी को पता नहीं था। लेकिन भक्तिशंकर सरस्वती ठाकुर अलग अलग किताब से ये सब कलेक्ट करके तिथि का हिसाब से नक्षत्र का हिसाब से भक्तिशंकर सरस्वती ठाकुर ने ये पंजिका को स्थापना की थी। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके साथ भगवान का कृपा है वही इसी तरीके से किताब को लिख सकते हैं। भक्तिशंकर सरस्वती ठाकुर अपना एक बायोमेट्रिक सॉरी बाई कैंटेबल के किताब है जो कि भक्तिशंकर सरस्वती ठाकुर अपना जीवन में एक ही इंग्लिश ग्रंथ रचना की थी, उसका नाम है बाई कैंटो। जिस बाई कैंटो किताब में भक्तिशंकर सरस्वती ठाकुर वर्णन करें ही हैज एक्सप्लेन अबाउट दैट आई डोंट हैव एनी क्वालिटी टू मेक दैट वैष्णव पंजिका बट बाई द मर्सी ऑफ अवर गुरु महाराज बाई द मर्सी ऑफ द गुरु गुरंगो आई एम ट्राइंग टू दैट। मैं उसको प्रेयर करने के लिए मैंने प्रयास कर रहा हूँ। तो साधु गुरु वैष्णव का कृपा से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहला ये वैष्णव पंजिका को चालू की थी। उसी धारा से आज भी ये वैष्णव पंजिका चल रहा है। ये सब कुछ आए भक्ति सिद्ध सरस्वती ठाकुर के द्वारा। किस तरीके से तिथि नक्षत्र हिसाब से कौन आचार्य का आविर्भाव तिरुभाव तब भक्ति सिद्ध सरस्वती ठाकुर विस्तृत रूप से उसको तो मतलब कोई व्यक्ति इसको लिख सकते हैं जिनके साथ भगवान का कृपा है। तो नीलम चक्रवर्ती ठाकुर भी जब इसी तरीका से 32 प्रकार का लक्षण उन्होंने देख लिए थे, देखने के बाद उनको पता हो गया कि ये जो बच्चा है ये घर में रहने वाला है। तालिका बाहु कहते कि कृष्णदास कविराज के समय वर्णन करे चाहते आदि लीला में कि तालिका बाहु अग्रेते करे पश्चात धावक, मतलब जिसके चरण में इस तालिका बाहु चिन्ह रहता है वो अग्रेते करे पश्चात धावक, मतलब जो कि घर छोड़कर बाहर जाएंगे और कभी घर में वापस आने वाले नहीं, पश्चात धावक। तो नीलम चक्रवर्ती ठाकुर ने ये सब चिन्ह जब देख लिए तब उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को कुछ भी नहीं बताया। आपना कन्या सची माता को भी कुछ नहीं बताया। एक ग्रंथ रचना की थी नीलम चक्रवर्ती ठाकुर, बहुत ही पुराना ग्रंथ है जो जिसमें नीलम चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन कर रहे कि मैंने सिर जाकर जो मदन मोहन बिगड़ो है जो कि बेलपुकुर में है जिन्होंने नवद्वीप धाम परिक्रमा की उनको जरूर पता होगा कि उसी धाम जगह पर जाकर नीलम चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि ये पुत्र को मैं आपके हाथ में समर्पित कर रहा हूँ। तो सिर्फ नीलम चक्रवर्ती ठाकुर को ही पता था कि ये परम ये निमान ये घर में रहने वाला है। तो इसी तरीका से गौरमुनि भी वर्णन किए कि देखो ये जो बालक कृष्णा इसका ऐसा कोई महान शक्ति उन्होंने प्राप्त की जिसके द्वारा उन्होंने गोप बालक गाभी सबको रक्षा कर सकते हैं, ब्रजवासी को रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए भगवान के सबसे अधिक प्रिय है गोपो बालक तथा गौ माता। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धीताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। इस तरीके से कृष्णा एक महान शक्ति के द्वारा ब्रजवासी को रक्षा करती है। जैसे दबानल आ गए पूरा, भक्तिविनोद ठाकुर इसको वर्णन करेगी। दबानल का अर्थ होता है कि कालिया का ऐसा कोई परम मित्र जो कि कालिया को इसी तरीका से दंड मिले तो उन्होंने संहार सहन नहीं कर पाए थे, जिसके कारण दबानल रूप लेकर आकर ब्रजवासी को परिशन करने के लिए आए। श्री सनातन गोस्वामी पाद इसके ऊपर टीका भी लिखे कि इसके लिए दबानल आए कि ब्रजवासियों को देखना चाहे कि ब्रजवासी के साथ कृष्ण का संबंध क्या है, जो कि आपका खाना पीना सब कुछ छोड़कर सिर्फ कृष्ण को देख रहे हैं, इसमें उसको मानसिक रूप से शांति मिल रही है। दे गॉट द मेंटल पीस। मानसिक शांति के कारण आपने जो भूख आपने जो खाना पीना सब कुछ छोड़ सकते, तो आज का दिन में पीपल आर सर्चिंग हाउ टू गेट द रियल द मेंटल पीस। होपा जी कहते हैं कि पीपल आर हैंकरिंग हाउ टू गेट द रियल पीस ऑफ देयर लाइफ। आज के दिन में व्यक्ति ढूंढते रहते हैं कि कैसे मेरे को मानसिक शांति को प्राप्त करना है। होपा जी बताते हैं देयर इज ओनली वन वे and if you chant Hare Krishna Mahamantra, then you will get the mental peace of your life. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो आइए संक्षिप्त रूप से थोड़ा अद्वितीय आचार्य के बारे में वर्णन कर देता हूँ। अद्वितीय आचार्य प्रभु जिनका आज आविर्भाव तिथि, उनके जन्म हुआ था बांग्लादेश में, जिस जगह का नाम है कोई कोई कहते हैं नवोग्राम। इसके जगह का बहुत ही सुंदर महत्व वर्णन किया शास्त्र में, नहीं तो नवोग्राम बोलते हैं कोई कोई बोलते हैं लाऊर, कोई बोलते हैं पोना तीर्थ। ये तीनों नाम का अलग अलग महत्व श्री भोपा जी पोपा डायरी में एक जगह ये पोना तीर्थ व लाऊर व नवोग्राम जहाँ पे अद्वितीय आचार्य प्रभु का जन्म स्थान जिसको बोलते हैं। पिताजी का नाम है कुबेर मिश्र और माता का नाम है नाभा देवी। कुबेर मिश्र कुबेर मतलब धन कुबेर जिसको बोलते हैं, जिस धन कुबेर, तो नाभा देवी बहुत साल तक अपुत्र थी, मतलब कोई पुत्र संतान कुछ भी संतान नहीं था। स्वाभाविक रूप से संतान ना होने का कारण कुबेर मिश्र बड़ा दुखी थे। और कुबेर शक्त संप्रदाय मतलब शिव जी का भक्त, इसमें वर्णन किए है कि पोना तीर्थ में जब कुबेर जी एक बहुत ही सुंदर शिव जी का मंदिर था, तो ये शिव जी का मंदिर में जाकर हर दिन कहते रहते थे शिव जी मेरा घर में कोई संतान नहीं है। इस पोना तीर्थ में जो शिव जी का मंदिर था बहुत ऊंचा है वो मंदिर, जाकर जो कुबेर मिश्र बताना चालू की थी उसी मंदिर में इको अर्थात प्रतिध्वनि होता था। तो जो भी बोलते थे कुबेर जी तो कुबेर मिश्र तो उसका वाइब्रेट हो जाता था। तो कुबेर जी सोचते अरे मैंने जो भी कुछ बोला वो शिव जी सुन रहे हर बात, शिव जी उत्तर भी दे रहा है, ही इज रिप्लाइंग, लेकिन मेरे को कुछ फल नहीं मिला, मतलब मेरा घर में कोई बच्चा नहीं आ रहा है। बहुत साल बाद उनके घर में ये अधिक तो आश्रय प्रभु प्रकटित हुए। तो ये अद्वैत आचार्य प्रभु जब प्रकृति थी उनका बहुत अलग अलग नाम रखे। कुबेर उनका नाम रख दिए थे कि कमलक्ष, और माता नाभा देवी उनका नाम रखे थे मंगला। इस मंगल और कमलक्ष नाम क्यों रखे इसका भी बहुत ही सुंदर व्याख्या की है कि बहुत साल बाद जब नाभा देवी बहुत साल तक अपुत्रक थे, अपुत्रक मतलब कोई बच्चा नहीं है घर पर, उसी समय बंगाल में एक विधि था कि जिस माता ने बच्चा प्रसव नहीं कर पाए वही उसी माता को दर्शन करना भी अमंगली था। तो माता नाभा देवी इतना दुखी हो गए थे कि हम लोगों ने इतने धार्मिक है, कुबेर मिश्र भी धार्मिक, बाले भी शिव जी का भक्त है लेकिन धार्मिक व्यक्ति है, इतना दान दान कर रहे हैं। दान दान का महत्व तो सबको पता होगा कि अद्वितीय आचार्य प्रभु जब शादी वगैरह की तो नृसिंह प्रसाद भादुरी का दो कन्या थी, एक का नाम है सीता ठाकुरानी, दूसरे का है श्रीदेवी, तब दोनों को उन्होंने शादी विवाह किए थे। और जब महाप्रभु इसी धराधाम में प्रकटित हुए तो वही अद्वैत आचार्य प्रभु बहुत प्रकार धन, बहुत प्रकार सोने, बहुत प्रकार अर्थ देकर जगन्नाथ मिश्र का घर में सीता ठाकुरानी को भेज दिए थे। इसी से प्रमाणित होते हैं कि अद्वैत आचार्य प्रभु एक धन्याढ्य ब्राह्मण, मतलब धनी ब्राह्मण जिसको होते पैसे वाले। ये मंगल नामकरण इसमें वर्णन किया शास्त्र में कि मंगल नामकरण होता है इसके लिए कि नाभा देवी बहुत साल तक अपुत्रक थी, मतलब कोई बच्चा नहीं, पूरा गांव वाले उनका परिजन वगैरह सब लोग उसका उनको देखने से निंदा वाक्य प्रयोग करते थे। ऐसा पहले जमाने में था जिस महिला शादी होने के बाद उनका बच्चा प्रसव नहीं कर पाते हैं तो बच्चे को मतलब उसी महिला को दर्शन करना भी पाप लगते थे। कहते कि एक जगह में लिखा है कि बाजा की जाने प्रसवे रजमता, मतलब जिसका बच्चा नहीं होता है उसको कहते कि बाजा एक शब्द होता है, उसको पता नहीं है कि प्रसव जंत्रणा लेवर पेन किसको बोलते हैं। तो नाभा देवी का मन में इसी तरीके से जंत्रणा थी। तो बहुत साल बाद जब अद्वैत आचार्य उनकी घर में प्रकटित हुए तब पूरा घर का वातावरण अलग हो गए, घर में से मंगल सूचक ध्वनि आ रहा है। किस तरीके से मंगल सूचक ध्वनि ये भी शास्त्र में बन रही है, अलग अलग तरीके से लक्षण दिखाई पड़ रहे घर पे। ये इतने साल बाद हमारा घर पे ऐसे एक महान पुत्र आए जिसके द्वारा में मंगल ध्वनि में सुनाई पड़ रहे थे, जिसके लिए नाभा देवी उनका नाम रख दी थी मंगला। पिताजी नाम रखे थे कमलक्ष, इसका भी वर्णन किया भक्तिवेन ठाकुर कि हो सकता है कि अद्वैत आचार्य के जो कमल का माफी चक्षु है जिसके कारण कमलक्ष। तो अद्वैत आचार्य नाम कैसे हुए उनका, ना कि वर्णन किए कि स्वयं ये है महाविष्णु अद्वैत आचार्य। महाविष्णु मतलब जिन्होंने माया के द्वारा महाविष्णु जगत करता माया सिजत तज तस्वातर एवं उत्तम अद्वैत आचार्य ईश्वर। महाविष्णु माया के द्वारा इस जगत को सृष्टि की थी और वही महाविष्णु का अवतार जो कि अद्वैत आचार्य को, इसके लिए कहते कि एवत्ततम दिश्य ईश्वर, मतलब जो कि स्वयं महाविष्णु का अवतार है। और अद्वैत नाम क्यों हुए ना, होली तत्व से अद्वैत तत्व में कोई अंतर नहीं है, होली से अभिन्न तत्व है, जिसके लिए कहते कि अद्वैत। और भक्ति का टीचर जिसको बोलते हैं, जितने सारे पुराण जितने सारे शास्त्र हैं, ही द रियल टीचर ऑफ द भक्ति। जिसके लिए वो आचार्य, इसके लिए उनका नाम है अद्वैत आचार्य। जिस जगह में उनका जन्म हुआ था बांग्लादेश में, वो जगह का नाम है पोना तीर्थ। इस पोना तीर्थ का महत्व तो बहुत ही सुंदर है। पोना तीर्थ नाम की हुए थे ना, बांग्लादेश में एक नदी है पदमा का ऑपोजिट साइड में, जिस नदी का नाम है जोदूकोटा। इस जोदूकोटा नदी का सामने एक गांव था, जिस गांव का नाम है पंडवाचरा। एक बांग्लादेश का किताब है बंगाली में, उसमें पूरा अद्वैत आचार्य का एकदम फैमिली हिस्ट्री डिटेल्स में वर्णन की है। पंडवाचरा गांव, जिस गांव में अद्वैत आचार्य प्रभु जन्म हुआ था, जिसके लिए वो जगह का नाम है पन्न तीर्थ। इस पन्न तीर्थ पना तीर्थ नाम क्यों हुए ना, अद्वैत आचार्य का मातामह हर दिन जाती थी नहाने के लिए, कहाँ पे, नी जोदूकोटा नदी में। तो एक दिन अद्वैत आचार्य जब बालक, तब पूछने लगे कि माता आप कहाँ जा रहे हो, बोलते मैं तो हर दिन जाता हूँ उधर जोदूकोटा में नहाने के लिए। बोलते आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब तीर्थों को बुला लेता हूँ। कि अद्वैत आचार्य बचपन से धार्मिक, तो माता ने मजाक करने लगा, क्या बोल रहे हो आप, सब तीर्थ को आप कैसे बुला लोगे। बोलते मैंने इतने साल तक मैं भक्ति कर रहा हूँ, अगर मेरा भक्ति में दम है तो मैं सब तीर्थ को बुला लेता हूँ, अगर मेरा भक्ति में दम नहीं है तो कोई तीर्थ आने वाले नहीं। तो अद्वैत आचार्य जैसे कि तुलसी और जल के द्वारा स्वयं महाप्रभु को बुला लेते थे, तो इसी तरीका से अद्वैत आचार्य अपना मंत्र बल के द्वारा सब तीर्थों को बुला लिए एक जगह पर। और एक जगह में जब बुला लिए तब माता माँ ने खुश हो गई एकदम देखकर। और उसी सात पोखर का तीर्थ का जल एक जगह में एकत्रित हुई, इकट्ठा हुई, और उसी सात तीर्थ ने वचन दी थी कि आज से हम लोग कभी ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। इस वचन का और एक शब्द होता है जिसका नाम है पौना, जिसके लिए कहते हैं कि पौना तीर्थ। मतलब अद्वैत आचार्य ने वचन दी थी कि जिसके लिए सात पकड़ का तीर्थ का जल एक जगह में आकर इकट्ठा हुई, जिसके लिए इसको कहते हैं कि पौना तीर्थ। और इस पौना तीर्थ में आज से सोचिए कि 20-25 साल पहले भी, सॉरी 20-25 साल नहीं होगा, 10-12 साल पहले भी कुछ भी नहीं था। श्री प्रभुपाद जी का कृपा से या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनी संघ का भक्त लोगों ने इस पौना तीर्थ में बहुत ही सुंदर एक मंदिर बनाया। इस कौन का मंदिर, जिन्होंने बांग्लादेश गए और जिन्होंने जाने वाले हैं जरूर दर्शन करके आइएगा इस पौना तीर्थ में। इस्कॉन के भक्तों के द्वारा बहुत ही सुंदर मंदिर बनाए, जहाँ पे जगन्नाथ जी है, राधा मदन मोहन और अद्वैत आचार्य का शिव विग्रह है। और इस पौना तीर्थ में सबसे बड़ा उत्सव होता है मधु कृष्ण त्रयोदशी। ये मधु कृष्ण त्रयोदशी का अर्थ होता है कि इस त्रयोदशी दिवस में, त्रयोदशी का दिन अद्वैत आचार्य प्रभु ये सप्त तीर्थ मतलब सात प्रकार तीर्थ को उसी जगह पर बुलाए थे। जिसके लिए इसको कहते हैं कि मधु कृष्ण तरुदशी। और ये सप्त तीर्थ आकर आज भी वही मधु कृष्ण तरुदशी तिथि में एक अचानक एक ये होता है कि भगवान का भक्त जो भी चाहते हैं, भगवान जो भी चाहते हैं पूरा हो जाते हैं। कहते हैं कि उसी जगह पे जुदुगोटा नदी में पूरा साल भर इतने ज्यादा पानी नहीं रहते, लेकिन ये मधु कृष्ण त्रयोदशी तिथि जिस तिथि में इस जुदुगोटा नदी एकदम पानी पानी पूरा हो जाता है उसमें, और भक्त लोग आकर उसमें नहाते भी है और बहुत ही अच्छे तरीका से ये अद्वैत आचार्य प्रभु का तिथि उत्सव मनाते हैं। तो आइए संक्षिप्त रूप से बता देता हूँ शांतिपुर का। शांतिपुर के बारे सबको पता होगा कि कहते कि अद्वैत आचार्य प्रभु का श्री पाठ, मतलब अद्वैत आचार्य प्रभु जब सात साल उम्र में पिताजी कुबेर मिश्र माता नाभा देवी उनको यही पौना तीर्थ से लेकर शांतिपुर में लेकर आए, जिस शांतिपुर का और एक नाम है बाबला तला, जिन्होंने नवद्वीप धाम परिक्रमा की उनको जरूर पता होगा कि नवद्वीप धाम परिक्रमा हो जाने के बाद एक दिन का उत्सव होता है शांतिपुर उत्सव, जहाँ पे अद्वैत आचार्य प्रभु सेवित विग्रह है, जहाँ पे राधा मदन मोहन जी का विग्रह है, और एक जगह है जिसको कहते हैं कि तीर्थस्थली शांतिपुर में। और शांतिपुर का खिचड़ी उत्सव सबको पता होगा, श्री भोपाल जी वर्णन किए कि शांतिपुर खिचड़ी उत्सव अद्वैत आचार्य प्रभु किस तरीके से शांतिपुर खिचड़ी उत्सव को प्रकटित किए थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर वृंदावन जाने वाले थे, छल के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु को लेकर आए इस शांतिपुर में। जब पूरा नवद्वीपवासी को पता हो गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर इस शांतिपुर में आए, तो सब लोग आना चालू किए और हाथ में बहुत पकड़ व्यंजन लेकर आ रहे थे। स्वयं सीता ठाकुरानी आए, सूची माता को भी लेकर आए, अद्वैत आचार्य प्रभु सूची माता को बुलाकर लेकर आए, तो महाप्रभु रुष्ट हो गए थे अद्वैत आचार्य, बता आप माता को क्यों बुलाए, सन्यासी होइया कर स्त्री संभाषण, बता नहीं मेरे को अपना स्त्री को भी नहीं देखना है, माता को भी नहीं देखना है, बता नहीं जिसके द्वारा आपने इस धराधाम में आपने को प्रकटित की हो, कम से कम पहले तो उनको दर्शन करो। तो अद्वैत आचार्य प्रभु बात सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु इसको स्वीकार की, तब सूची माता बहुत प्रकार व्यंजन को लेकर आए, मालवती देवी बहुत प्रकार व्यंजन लेकर आए, सब अपना अपना जगह से लेकर आए। जब इतने प्रकार व्यंजन लेकर आए तो अद्वैत आचार्य प्रभु सोचने लगे कि इतने प्रकार व्यंजन बनाकर कैसे हम लोग महाप्रभु को खिला सकते हैं। तो भगवान बुद्धि देते, ददामि बुद्धि युक्तम, भगवान स्वयं बुद्धि दिलाते हैं। देशम सतत युक्ता नाम भरितम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि युक्तम, भगवान बुद्धि दिला देते हैं अगर अपनी प्रीतिपूर्वक भगवान को सेवा करे तो। तो अचानक अद्वैत आचार्य प्रभु का मन में विचार आए कि इतने प्रकार व्यंजन आए तो ये व्यंजन को अलग अलग तरीके से बनाने में काफी समय लग सकता है, तो सबसे अच्छा है जितने पुकार व्यंजन आए सबको एक कट्टा करके एक पुकारी आइटम बना दो जिसका नाम है खिचड़ी। श्री भोपाल जी वर्णन कर रहे हैं कि शांतिपुर उत्सव में कोई भी व्यक्ति, जितने पापी व्यक्ति हो, पखंडी हो, कोई भी हो, अगर इसी शांतिपुर में जाकर उस दिन खिचड़ी बांटे और खिचड़ी प्रसाद को ग्रहण करे तो इसी जीवन में स्वयं महाप्रभु आपका हाथ पकड़कर वैकुंठ धाम तक आपको ले जाएंगे। इस खिचड़ी का इतने महत्व है कि अद्वैत आचार्य प्रभु किस तरीके से भगवान को द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने भगवान को संतुष्ट विधान की थे एक खिचड़ी उत्सव का माध्यम से। तो अद्वैत आचार्य के बारे में बहुत सारे लीला, बहुत सारे तत्व का वर्णन अलग अलग शास्त्रों में है, जो कि समय के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आज अद्वैताचार्य को आविर्भाव तिथि उत्सव, जिन्होंने स्वयं महाप्रभु को बुला कर लेकर आए, जब देखा कि कली युग में व्यक्ति पाप से एकदम गड़े हुए हैं, उसी प्रकार व्यक्ति को उद्धार के लिए स्वयं अद्वैताचार्य प्रभु महाप्रभु को बुला कर लेकर आए। हुहुं कारो गर्जन आदि सर्वमचर लिखते हैं अद्वैत शतकम में, हुहुं कारो गर्जन आदि, मतलब अद्वैताचार्य के गर्जन को सुनकर, हुंकार को सुनकर महाप्रभु एकदम विचलित हो गए थे। से प्रभु गोलक होते आशील रहे, अद्वैताचार्य के हुंकार को सुनकर महाप्रभु स्वयं गोलोक धाम से इसी धड़ा धाम में आए सबको उद्धार के लिए। नवद्वीपे जे प्रभुर आविर्भाव से प्रभु गोलोक होते आशील रहे। ऐसे को महाविष्णु माया सिजत तज, जिन्होंने अपना प्रेम के द्वारा भगवान को बुला कर लेकर आए इस जगतवासी को उद्धार के लिए। हरे कृष्णा
हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
श्री अद्वैताचार्य प्रभु की अद्वैताचार्य आविर्भाव तिथि उत्सव की हिताय गौर शीतनाथ प्रवणंदे हरि हरि। शील प्रभुपाद की वंशागल्पतरुभ्य कृपा सिंधु पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्य